नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, बारापुरा एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी। उन्होंने आगे बताया कि पूंजीगत व्यय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार को 756 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कर केंद्र सरकार ने विकास के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और दिल्ली के सामर्थ्य पर अपना अटूट विश्वास भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास को एक नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से संशोधित प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास और उत्थान योजना पीएम उदय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह राशि आधुनिक भू सर्वे, जिला स्तर पर पीएम उदय प्रकोष्ठों के गठन और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग दिल्ली के सभी 13 जिलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीएम उदय प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। इसके अलावा राजधानी की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों का अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में पहले चरण के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में शहरी विकास कोष से इस राशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ शीघ्र और सुगमता से मिल सकेंगे। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज गुरुग्राम में नवीन न्यायिक न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस भवन को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे न्याय मिलने की गति में तेजी आएगी।
इस प्रांगण में न्याय और न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों।
इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन संविधान की मर्यादा, न्यायपालिका पर जनता के विश्वास और आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रतीक है।
यह भूमि ज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र बना है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस राष्ट्र को समर्पित हो रहा है।
वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है।
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
इस न्यायालय परिसर का उद्घाटन होने से लोगों को समयबद्ध और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के कब्जे से फर्जी पंजीकरण दस्तावेजों वाले और इंजन तथा चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ किए गए 12 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं।
पुलिस ने बताया कि ये गिरोह दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की लग्जरी गाड़ियां 4 से 5 लाख रुपए में खरीदते थे। इसके बाद वो वाहनों के इंजन और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करते और इन वाहनों को असली बताकर पंजाब और राजस्थान में बेच देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और चोरी के अन्य वाहनों का पता लगाने और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश कर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मंडल की ओर से नियमित रूप से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों के अंतर्गत यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली मंडल ने कल आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने के कुल 111 मामले पकड़े गए। अभियान के दौरान 1,11,700 रुपए का रेलवे राजस्व भी वसूला गया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनसेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का कल मैसूरू में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। एस जानकी के संगीत सफर पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इलैयाराजा, एमएस विश्वनाथन, केवी महादेवन और एआर रहमान सहित अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज बनी। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। अपने लंबे करियर में शास्त्रीय, रोमांटिक, लोक, हास्य और भावपूर्ण गीतों को समान सहजता से स्वर दिए। यार बिना चैन कहाँ रे, दिल में हो तुम, सिंगारा विलाना देवा, सकल कला वल्लवन, नगुवा नयन और चिन्नदा मल्लिगे हुए जैसे गीत उनकी मधुर और भावपूर्ण गायकी के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
एस जानकी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जानकी अम्मा की गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस जानकी का निधन संगीत जगत और देश के सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में एस जानकी के गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकी अम्मा के निधन से भारत की संगीत विरासत को अपूर्णीय क्षति हुई है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौरान कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। एशियाई चैंपियन और रजत पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का सदस्य रही सुमन देवी ने कहा कि फिटनेस स्वस्थ जीवन का आधार है। सुमन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने हर किसी को फिटनेस के प्रति जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ाने को लेकर चिंतित है।
वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रूपये प्रावधान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।